بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, दिसंबर की 22, जमादिल अव्वल की 27 और देई माह की पहली तारीख। आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार से है। पहले हम आपको विश्व समाचार सुनवाएंगे। विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, आज की बात, और हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। इन कार्यक्रमों के बारे में यदि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के गृह मंत्री ने कहा है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के प्रयास किए गए। नासिर गनानी कहते हैं कि प्रतिबंध लगाने वाले घड़ियाली आंसू बहाते हैं। यूक्रेन युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका $1 अरब की सहायता करने जा रहा है। लड़कियों की पढ़ाई पर प्रतिबंध के तालिबान के फैसले पर OIC ने चिंता जताई है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
गृह मंत्री ने कहा है कि मौलवी अब्दुल वाहिद के हथियारों को विदेश से आदेश मिल रहे थे। ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत के खास नगर के मौलवी अब्दुल वाहिद रीगी इमाम जुमा थे। वे अपने क्षेत्र के बहुत ही मशहूर सुन्नी धर्म गुरु थे। 8 दिसंबर को कुछ अज्ञात लोगों ने मौलवी अब्दुल वाहिद रीगी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के गुप्तचर मंत्रालय ने 14 दिसंबर को बयान जारी करके बताया था कि ईरान के सुन्नी धर्म गुरु मौलवी अब्दुल वाहिद की हत्या के संबंध में 3 लोगों को देश से निकल भागने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के बारे में ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने बताया है कि मौलवी अब्दुल वाहिद रीगी की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों से प्राप्त जानकारी से ये पता चलता है कि उनको विदेश से निर्देश मिल रहे थे, जिसका उद्देश्य ईरान में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना था।
इस्लामिक गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के नए प्रतिबंध की प्रतिक्रिया में कहा है कि ईरानी राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला और अधिकतम दबाव डालने वाला यल्दा की रात में ईरानियों के लिए घड़ियालों आंसू बहाता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया था कि बाइडेन सरकार तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति जारी रखेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर गनानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अमरीका उपद्रव और आतंकवाद का समर्थक है और वह ईरानी राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला और अधिकतम दबाव की नीति पर अमल करने वाला है और ईरानियों के लिए वो घड़ियालू आंसू बहाता है।
ईरान का कहना है कि यूक्रेन को पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक धैर्य असीमित नहीं होगा। अमरीकी कांग्रेस में यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान पर ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जेलेंस्की के बयान को निराधार और बार बार दोहराए जाने वाले विचार कहकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये जान लेना चाहिए कि निराधार आरोपों के बारे में हमारा स्ट्रेटेजिक धैर्य असीमित नहीं होगा। अमेरिका से अधिक सहायता हासिल करने के उद्देश्य से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार अमरीका पहुंचे हैं। अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ईरान और रूस के सहयोग का उल्लेख करते हुए यूक्रेन के प्रतिष्ठानों पर मास्को द्वारा ईरानी ड्रोन के प्रयोग की बात की। जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध में अमरीकी कांग्रेस में कीव के समर्थन की मांग की।
यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका यूक्रेन को अन्य अरब डॉलर देने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को घोषणा की है कि मैं अपने विदेश मंत्री को ये अधिकार दे रहा हूं कि यूक्रेन को सीधे तौर पर सुरक्षा सहायता देने के लिए $1 अरब को विशेष करें। बताया जा रहा है कि अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को बाइडेन सरकार की ओर से $2 अरब की सैन्य सहायता की जाएगी, जिसमें पेट्रियट मिसाइल भी शामिल होंगे। बाइडेन का कहना है कि रक्षा के क्षेत्र में यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाना हम जारी रखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साहस और अमरीका की सहायता से हमें स्वतंत्रता मिलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि अमरीकी सहायता से स्थिति अब नियंत्रण में है। अमरीका के नेतृत्व में पश्चिमी देश रूस के विरुद्ध व्यापक प्रतिबंध लगाने के साथ ही यूक्रेन को हथियारों की सहायता दे रहे हैं। यूक्रेन को अब तक $1 अरब की सैन्य सहायता भेजी जा चुकी है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमरीकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक संबोधन में यह कहा है कि यूक्रेन जिंदा है और लड़ रहा है। जेलेंस्की ने शपथ ली कि उनका देश कभी भी रूस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की से वादा किया है कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो बाइडेन ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, बाइडेन ने कहा कि आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। अमरीकी लोग हर कदम पर आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। अमरीकी अंदर से समझते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम स्वतंत्रता की लौ को उज्ज्वल बनाए रखेंगे और प्रकाश बना रहेगा और अंधेरे पर हम विजय प्राप्त करेंगे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नाटो के लगभग समस्त सदस्य देशों की सैनिक क्षमता का प्रयोग रूस के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि मॉस्को को चाहिए कि नाटो के हथियारों और सैन्य संसाधनों के दृष्टिगत अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर बनाए और स्पष्ट है कि नाटो के लगभग समस्त सदस्य देशों की सैनिक क्षमता का प्रयोग मॉस्को के खिलाफ हो रहा है। पुतिन ने कहा कि नाटो की सेनाओं और उनके सैन्य उपकरणों की जानकारी रूस को है। इसी प्रकार रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय और इस देश की सेना प्रमुख को आदेश दिया है कि वे नाटो की टैक्टिक का विश्लेषण करें और उसे रूसी सैनिकों के प्रशिक्षण में शामिल करें। इसी बीच रूसी प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि 25 से अधिक पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध में कीव की $97 अरब की सैन्य सहायता कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन के रण क्षेत्रों में नाटो के अवसर मौजूद हैं और वे इस युद्ध को यथासंभव लंबा करने की चेष्टा में हैं।
इस्लामी सहयोग संगठन ने महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध के तालिबान के फैसले की निंदा की है। OIC के महासचिव ने तालिबान द्वारा विश्वविद्यालय में महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगाए जाने को निराशापूर्ण कदम बताया। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि तालिबान की ओर से छात्राओं की पढ़ाई पर रोक के आदेश को हम चिंताजनक मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी सहयोग संगठन का मानना है कि ये फैसला बहुत ही दुखद है। ओआईसी के महासचिव के अनुसार ये काम अफगानिस्तान की लड़कियों को उच्च शिक्षा, नौकरी और सामाजिक न्याय से रोकेगा। उनका कहना था कि हम तालिबान के इस फैसले की भर्त्सना करने को अनदेखा नहीं कर सकते।
स्वीडन के न्याय मंत्रालय ने बताया कि देश में हिंसक घटनाएं अभूतपूर्व ढंग से बढ़ रही हैं। स्काई न्यूज के अनुसार स्वीडन के न्याय मंत्री गुनार स्ट्रोनर ने कहा है कि देश में 2022 में अग्नि अस्त्रों के साथ हिंसा बहुत बढ़ी है। उन्होंने स्वीडन में सशस्त्र ढंग से बढ़ती हिंसा के प्रति चिंता व्यक्त की। स्वीडन के मंत्री का कहना था कि बहुत खेद की बात है कि इस साल देश में अग्नि अस्त्रों के साथ हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्वीडन की सरकार के अनुसार इस वर्ष वहां पर गोलियों से कम 60 लोग मारे गए। हालिया वर्षों के दौरान इस पश्चिमी देश में गोलाबारी की भी कई घटनाएं घटी हैं।
कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा और नीतियों के कारण देश के टूटने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने आर्थिक विषमता बढ़ने और धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने कहा कि कांग्रेस से अक्सर पूछा जाता है कि जब देश को कोई तोड़ नहीं रहा तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जा रही है। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। क्या ज़ायोनी शासन का अंत निकट है? जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
दोस्तों, 73 साल से अधिक का समय गुजर रहा है जब से ज़ायोनी शासन ने फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर कब्जा कर रखा है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने और उनके खिलाफ अत्याचार का सिलसिला यथावत जारी है। पर जो चीज़ ध्यान योग्य है वो ये है कि खुद बहुत से ज़ायोनी और इसराइली कहने लगे हैं कि शीघ्र ही इसराइल का अंत हो जाएगा। शायद ये बात बहुत से लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और कहेंगे कि इसराइल बहुत मजबूत है और उसे अमेरिका सहित दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त है, तो ज़ायोनी शासन का अंत कैसे संभव है। इसके जवाब में बहुत से जानकार हलकों का कहना है कि इसराइल उतना मजबूत नहीं है जितना कुछ लोग कहते व समझते हैं। ये वही इसराइल है जिसने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सेनाओं को हरा दिया था, पर अब ताकत का संतुलन बदल चुका है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह और इसी तरह फिलिस्तीन के प्रतिरोधक गुटों से इसराइल की होने वाली लड़ाइयों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि न केवल ज़ायोनियों के उल्टे पलायन बल्कि इसराइल के अंत की भी उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। एक समय था जब फिलिस्तीनी पत्थरों से ज़ायोनी सैनिकों का मुकाबला करते थे, पर आज फिलिस्तीनी रॉकेटों और मिसाइलों से ज़ायोनी शासन के अतिक्रमण का जवाब देते हैं, जबकि फिलिस्तीनी परिवेष्टन में हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना है। हजारों नहीं, लाखों ज़ायोनियों और यहूदियों को दूसरे देशों व क्षेत्रों से लाकर अवैध अतके से फिलिस्तीन में बसा दिया गया और उनसे सुरक्षा और विकास का वादा किया गया था। पर अवैध अतिक्रमण फिलिस्तीन में सालों का समय बिताने के बाद बहुत से ज़ायनी और इसराइली इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने इसराइल आकर बहुत बड़ी गलती की है और इसी वजह से बहुत से ज़ायनी व यहूदी इसराइल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ज़ायनियों व यहूदियों को अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि उनसे जो वादे किए गए थे वे मृग तिशला के अलावा कुछ और नहीं है। जानियों को छिपने के लिए अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के बहुत से क्षेत्रों व स्थानों पर बंकर बनाए गए हैं। जानकार हलकों का कहना है कि जब फिलिस्तीनी पत्थरों से लड़ते और इसराइली सैनिकों का मुकाबला करते थे तब जानियों को छिपने के लिए बंकर नहीं बनाए गए थे। बंकरों का निर्माण उस समय किया गया जब फिलिस्तीनी इसराइली अत्याचारों का जवाब रॉकेटों और मिसाइलों से देने लगे हैं। दूसरे शब्दों में फिलिस्तीन के संघर्षकर्ता गुटों के हौसले बहुत बुलंद हैं और इसराइल फिलिस्तीन की जमीनों पर अब उस तरह से कब्जा नहीं कर पाता जैसे वो कुछ साल पहले करता था। इतिहास के दृष्टिगत बहुत से जानियों का मानना है कि इसराइल का अस्तित्व 80 साल से अधिक नहीं रहेगा, इन अर्थों में कि 2028 तक उसका अंत हो जाएगा। मौजूद वास्तविकताओं के दृष्टिगत बहुत से इसराइलियों का कहना है कि इससे पहले यहूदियों की दो सरकारें थी और उनमें से कोई भी सरकार 80 साल से अधिक दिनों तक बाकी न रह सकी। इस आधार पर ज़ायनी शासन का अंत भी निकट है। ज़ायनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बाराक के उस बयान को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे इतिहास में यहूदियों की कोई भी सरकार 80 साल से अधिक समय तक नहीं रही है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
यूक्रेन रूस युद्ध पर पेश है एक समीक्षा अख्तर अब्बास की जबानी।
यूक्रेन में युद्ध अभी भी अपने 10वें महीने के अंत में पूरी ताकत के साथ जारी है और इसके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये ऐसी हालत में है कि इस युद्ध के संबंध में हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालने से पता चलता है कि इस तरह से इस युद्ध के विस्तार की संभावना बढ़ गई है। यूक्रेन में युद्ध से संबंधित घटनाक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के राष्ट्रपति विलोदिमिर ज़ेलेंस्की 24 फरवरी को यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से अपनी पहली विदेश यात्रा पर बुधवार को अमेरिका पहुंचे और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान पैदा होने वाले खतरों और सुरक्षा संबंधी बहस के वजह से इस यात्रा का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया। इस यात्रा के दौरान अमेरिका कीव के लिए अरबों डॉलर के ताजा सैन्य सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को विकसित पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को मंजूरी दे सकता है। आज तक अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय और सैन्य पैकेज दिया है और रूस के विरुद्ध युद्ध में उनका भरपूर समर्थन किया है। ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन के लिए एक अन्य बड़ा समर्थन पैकेज रास्ते में है। इस यात्रा के जवाब में क्रेमलिन ने घोषणा की है कि विलोदिमिर ज़ेलेंस्की की यात्रा से कुछ भी सकारात्मक चीज हासिल नहीं होगी और रूस को कीव के साथ शांति वार्ता का कोई मौका नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मॉस्को ने यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी के बारे में भी चेतावनी दी है। क्रिमिनल हाउस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि कीव को हथियारों की आपूर्ति जारी है और आपूर्ति किए गए हथियारों की सीमा का विस्तार हो रहा है। बेशक ये सब संघर्ष में वृद्धि की ओर ले जाता है और यूक्रेन के लिए ये कोई शुभ सूचना नहीं है। جس مدعے نے حالیہ دنوں میں روس کے لیے بڑی چنتا پیدا کر دی ہے وہ امریکہ سے یوکرین کو پیٹریٹ میزائل سسٹم ڈیلیوری کی سمبھاونا ہے۔ یوکرین میں یدھ کو سماپت کرنے کے پریاسوں کے بارے میں امریکہ کے دعووں کے وپریت واشنگٹن اور اس کے پشچمی گھٹکوں نے اس خونی یدھ کو جاری رکھنے اور یوکرین کو یتھا سمبھو ادھک سے ادھک آدھونک ہتھیاروں سے لیس کرنے کی نیتی اپنائی ہے، وشیش روپ سے لمبی دوری کے میزائلوں اور ڈرون جیسے نرنائک و اہم ہتھیاروں سے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ ایران کے ایک مہیلا پرتینی منڈل نے بھارت کے اپنے دورے کے دوران نئی دلی میں حجاب کے مدعے پر ایران کی صحیح تصویر پیش کی ہے۔ بیورہ دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
ایسے سمے میں جب ایران میں حجاب کے مدعے کو لے کر پشچمی دیشوں اور پشچمی میڈیا نے مورچہ کھول رکھا ہے، بھارت کی یاترا پر آئے ایرانی مہیلاؤں کے ایک چار سدسیہ پرتینیدھی منڈل نے کل دلی میں ایران کے سانسکرتک کیندر میں بھارت کے کچھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے پترکاروں سے بھیٹ کی اور ایران کی حالیہ گھٹناؤں سے سمبندھت ان کے پرشنوں کے اتر دیے۔ ایرانی راشٹرپتی کے کاریالے میں مہیلاؤں اور پریوارک معاملوں کی مہا ندیشک ڈاکٹر خدیجہ کریمی نے ایران اور بھارت کے پراچین میتریپورن ایوم سانسکرتک سمبندھوں کا الیکھ کیا اور کہا کہ یدی یہ سمبندھ نہیں ہوتے تو ہم ساہتیک کراکرتیوں سے ونچت رہتے۔ ڈاکٹر خدیجہ کریمی نے ایرانی مہیلاؤں کی ورتمان استھتی پر اٹھنے والے پرشنوں کے اتر میں کہا کہ ایران میں اسلامک کرانتی کے بعد چار دہائیوں سے ادھک سمے میں ایرانی مہیلاؤں نے ہر شیتر میں کافی پرگتی کی ہے اور وہ آرتھک، سانسکرتک، شیکشنک اور دوسرے شیتروں میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہی ہیں۔ ان کے انوسار ایرانی مہیلاؤں میں ساکشرتا کی در 90% سے ادھک ہے۔ انہوں نے وگیان و پردیوگیکی، میڈیسین، میڈیکل اور کھیل میں بھی ایرانی مہیلاؤں کے اچھے پردرشن کا الیکھ کیا اور کہا کہ پشمی میڈیا نے ایران ایوم ایرانی مہیلاؤں کی وش میں غلط تصویر پیش کی ہے۔ انہوں نے حجاب سے سمبندھت پترکاروں کے پرشنوں کے اتر میں کہا کہ ایران کے اسلامک نیموں کا پالن کرتے ہوئے ایرانی مہیلائیں حجاب کے سندرب میں سوتنتر ہیں اور کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی۔ ڈاکٹر کریمی نے کہا کہ ایران کے سندرب میں پشمی میڈیا کے غلط پروپیگنڈے سے عام لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ پترکار ہیں، آپ سے امید ہے کہ آپ خبروں کی تہ تک جائیں گے اور وشوسنی سوتروں سے واستوکتا کا پتہ لگائیں گے۔ سماچار پتر میرا وطن کے ایڈیٹر ارشد فریدی نے کہا کہ ہر دیش اپنے نیموں کے انوسار چلتا ہے اور اس میں کسی کو ہستکشیپ نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کے کلچرل کاؤنسلر ڈاکٹر علی ربانی نے ایران اور بھارت کے مہتوپورن سمبندھوں کا الیکھ کیا اور کہا کہ ان سمبندھوں کو مضبوط بنانے میں کویوں، ساہتیکاروں، کلاکاروں اور پترکاروں کی مہتوپورن بھومیکا رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، اب پیش ہے ساپتاہک کاریکرم آج کی بات۔
آج کی بات۔
شروع کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں احمد عباس۔ کارکرم میں ہم بات کریں گے بھارت چین کے بیچ جاری تناؤ پر۔ بھارت میں وپکشی دل کانگریس کے نیتا راہل گاندھی نے ایک مہتوپورن بیان دیا جس سے دیش کے راجنیتک اور پرچارک پٹل پہ ہلچل مچ گئی۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ چین یدھ کی تیاری کر رہا ہے اور ہماری سرکار سو رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ راہل گاندھی نے کیا کہا۔
مجھے جو دکھ رہا ہے، جو چائنا کا تھریٹ ہے، اور مجھے تو وہ کلیئر، اور میں اس کو اب دو تین سالوں سے کہہ رہا ہوں، وہ بالکل کلیئر ہے۔
और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने उनका पूरा प्रेपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रेपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है।
राहुल गांधी ने मीडिया पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि वो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। राहुल गांधी ने मीडिया को याद दिलाया कि देश सब कुछ देख रहा है,
कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था ब्रदर, देश देख रहा है।
राहुल गांधी की ओर से यह बयान आते ही भाजपा उन पर हमलावर हो गई। भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर ने राहुल गांधी के बयान के जवाब में आरोप लगाया कि 1962 में युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने देश की जमीन का बड़ा भाग चीन को दे दिया।
अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए, और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है, जैसे कि अभी उन्होंने कहा।
डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई।
Why people think that Indian army is not ready is that we are not making any aggressive move. We are only reacting to the violation of our border, which is our policy, and we are following it. So I don't know why what Mr. Rahul Gandhi says or not, that is not my concern. My concern is that Indian armed forces are more than ready. They have already pushed them back three times. They'll push them back more.
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है, जिसमें काफी जटिलताएं भी हैं। दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है 3,440 किलोमीटर लंबी सीमा। इलाके की स्थिति ऐसी है कि कई बार नदियों, झील और बर्फ से घिरे पहाड़ों के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC को लेकर विवाद होता रहता है और कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। वर्ष 2020 के जून में गलवान में भारत और चीन के बीच संघर्ष में भारत के 20 सैनिक मारे गए, जबकि चीन ने भी बाद में अपने 4 सैनिक मारे जाने की बात स्वीकार की। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। सबसे हालिया विवाद 9 दिसंबर 2022 का है, जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि इस झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए। राजद के मनोज झा ने राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लिया और उनका कहना था कि ये बात तो भाजपा के कुछ नेता भी कह रहे हैं। हालांकि मनोज झा ने जिस भाजपा नेता का नाम लिया वो मोदी सरकार के आलोचक माने जाते हैं। मनोज झा का कहना था कि सरकार सच्चाई छिपा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तीखे बयान और आरोपों के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल उठा दिए। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और माहिर वक्ता व डिबेटर पवन खेड़ा ने सरकार को बुजदिल तक कह दिया।
आप अपनी ही सेना को कमजोर करने पर क्यों तुले हुए हो? क्या दबाव है आप पर चीन का? हमें मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिनिधि मंडल भेजता था चीन, हमारी सरकार थी तब भी ये चीन भेजते थे अपने प्रतिनिधि मंडल को, वहां 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने की बैठकें चलती थी, हमें नहीं मालूम क्या चर्चा होती थी उस पर। एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, इसका क्या काम है चीन से जाकर बातचीत करने का। हमें मालूम है कि 2014 में 13 नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्कूल में गए। पार्टी स्कूल क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्कूल है, वहां ट्रेनिंग लेने गए, शिक्षा लेने गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिक्षा लेने क्यों जाते हैं? क्या शिक्षा मिलती है उन्हें? कैसे चीन की कंपनियों को उपकृत किया जा रहा है, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को ठेके दिए जा रहे हैं, गुजरात में दिए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में उनसे पैसा लिया जा रहा है, अनाप शनाप हरकतें हो रही हैं, हमें किसी को देश में जानकारी नहीं मिल रही।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात '96 में दोनों देशों के बीच ये सहमति हुई थी कि सीमा पर बंदूक या विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मगर गलवान घाटी में होने वाली झड़प ने दोनों ही देशों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत के जाने माने वरिष्ठ टीकाकार सतीश के सिंह का कहना है कि चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह मामला गंभीर है। उनके अनुसार राहुल गांधी से शब्दों का चयन करने में गलती हुई।
दरअसल अभी जरूरत इस बात की है कि इन कैमरा ही सही, लेकिन लोगों को विश्वास में लिया जाए कि आखिर वाकई स्थिति क्या है। मैं राहुल गांधी के बयान पे आता हूँ। उनका एक बयान तो अगर मान लीजिए सतर्क करने के लिए है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और ये बार बार वो बोल रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि सरकार भी नहीं समझती इस बात को। लेकिन दूसरा बयान जो है, मैं इसको कहता हूं कि भाषाई विकृति। वो कहना ये शायद चाहते होंगे कि देखिए हमारी नीतियों की वजह से इस तरह से हमारे सैनिक पिट रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोल दिया, सैनिक पिट रहे। तो सैनिक पिट रहे तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी तो इसको जरूर उठा लेगी, और इसको तो मतलब सैनिकों के अपमान से और उसके मनोबल को तोड़ने से जरूर जोड़ेगी कि और घरेलू राजनीति का सवाल।
मगर JNU के समाज शास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार का कहना है कि चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर विपक्ष को बहुत कुछ बोलने की जरूरत है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा बहुत कम कहा, यह मसला ऐसा है जिस पर बहुत कुछ कहने और सख्त शब्दों में कहने की जरूरत है।
तो हम तो कहेंगे कि ये सरकार खैर मनाए कि विपक्षी दल का नेता एक मध्यम दर्जे की भाषा बोलने वाला है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी आज होते, अगर जॉर्ज फर्नांडिस होते, राम मनोहर लोहिया होते, तो इनके झूठ का पर्दाफाशी नहीं करते, वो नुक्कड़ नुक्कड़ पर सभा करते, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जुलूस निकालते। 2000 किलोमीटर जमीन का जाना मामूली बात नहीं है, और सैनिक पिट रहे हैं कि फूल की माला उनके ऊपर चीनी डाल रहे हैं, ये बताना भी किसी का फर्ज है। अगर भारत का रक्षा मंत्री बोलने में उसकी जबान लड़खड़ाती है, भारत के प्रधानमंत्री का सच के साथ रिश्ता टूट चुका है, तो विपक्षी दल को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मुझे तो ताज्जुब यह है कि बाकी दल क्यों चुप हैं। अरुणाचल से लेकर के हिमाचल के लद्दाख तक के लोग बहुत आतंकित हो चुके हैं, बहुत घबराए हुए हैं, और उनको लगता है कि सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीर विषय मानते हैं, और उनका नजरिया यह है कि इस मामले में केवल तथ्यों पर बात की जानी चाहिए, हर तरह की अटकलबाजी से बचना चाहिए। विनोद शर्मा ने वर्तमान भारत चीन तनाव पर बात करते हुए 1962 की जंग के हालात के बारे में कुछ बातें बयान की।
मैं ये संकेत देना चाहता हूँ, और मैं अपनी सरकार से, आज की तात्कालीन सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये टाइम भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से लड़ने का नहीं है। ये टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए देश को एकजुट करके चीन के खिलाफ समक्ष होकर खड़े होने का है, और अगर हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई सही मायने में करनी है तो देश एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो जाए। जब 1962 की लड़ाई हुई, पंडित जी ने एक फुल फ्लेज्ड डिबेट करवाई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट सेशन में गई, हर किसी ने अपने विचार रखे। आज के दिन भारत की वो कलेक्टिव डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ नदारद है।
भारतीय मीडिया में अब 1962 के भारत चीन युद्ध की बात हो रही है। 60 साल पहले पतझड़ के मौसम की सुबह थी जब युद्ध शुरू हुआ था। 23 अक्टूबर 1962 को चीन और भूटान की सीमा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा में चीन के सैनिकों ने भयंकर गोलाबारी शुरू कर दी। ये इलाका आज अरुणाचल प्रदेश का है जिस पर चीन अपना हक होने का दावा करता है। दोनों पक्षों के बीच साल भर में तनाव की ये ताज़ा घटना यही की है। चाइनीज इंडिया वॉर कोलिजन कोर्स ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड के लेखक और स्वीडिश पत्रकार बर्टिल लिंटनर को भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि गोलाबारी के आसमान में उजाला हो जाता था और विस्फोट की आवाजें पहाड़ों में गूंजती थीं। चीनी सैनिकों ने एक भारतीय पोस्ट को कब्जे में ले लिया था। 17 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 13 को पकड़ लिया था। औचक हमले और भारतीय सेना की कमजोर तैयारी का फायदा उठाते हुए वे आगे बढ़े। अगले दिन उन्होंने तवांग पर कब्जा कर लिया जो कि पास की घाटी में बसा हुआ बौद्ध मठों का शहर है। इसके बाद चीनी सैनिक दक्षिण की ओर बढ़े। मध्य नवंबर वे बोमडिला तक पहुंच गए जो कि मठों वाला एक अन्य कस्बा है। यहां से असम 250 किलोमीटर दूर है जहां भारत के चाय के बागान, तेल के कुएं हैं और बड़े पैमाने पर जूट का उत्पादन होता है। 21 नवंबर को चीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की और उत्तर में 20 किलोमीटर पीछे की ओर हट गया जहां दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ब्रिटिश भारत के नक्शे में जहां सीमा रेखा बनी है। लिंटन ने लिखा है कि युद्ध खत्म हो गया था। कुछ ही हफ्तों में पीएलए के सैनिक पहाड़ के चीन नियंत्रित क्षेत्र में लौट गए थे। इस लड़ाई में भारत के 1383 सैनिक मारे गए और करीब 1700 गायब हुए। चीन के रिकॉर्ड के अनुसार भारत के 4900 सैनिक मारे गए और 3968 सैनिक जिंदा पकड़े गए। चूंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न है और दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए विश्व के अनेक देशों की इच्छा यही है कि यह मसला आपसी टकराव तक न पहुंचे बल्कि इससे पहले ही इसका समाधान निकल आए। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम अभी आपने सुना आज की बात, जिसे पेश किया अहमद अब्बास ने। और अब सभा के अंत में पेश है कार्यक्रम सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं के कनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसी सफल ईरानी महिलाओं से आपका परिचय कराएंगे जो विदेश में रहकर ईरान का नाम रोशन कर रही हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में ये कहा था कि ईरानी महिलाओं को इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि वह समाज में अधिक प्रमुख भूमिकाओं को निभा सकती है और उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलताओं को भी हासिल किया है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने ये तय किया है कि आपका परिचय ईरान की ऐसी सफल महिलाओं से कराएंगे जो दुनिया के विभिन्न देशों में रहकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली मनमोहक सफलताओं को प्राप्त किया है और आज उन्हें पूरी दुनिया उनकी कामयाबी की वजह से पहचानती है। इन सफल महिलाओं की कामयाबी एक स्पष्ट संकेत देती है कि ईरानी पुरुषों और महिलाओं में असाधारण प्रतिभा है और वे दुनिया में कहीं भी हो अपनी क्षमता और प्रतिभा का एक स्पष्ट संकेत जरूर छोड़ते हैं। आज हम जिन सफल महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं या इसके अलावा ऐसे सभी कामयाब ईरानी जो विदेशों में रह रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का जन्म ईरान में ही हुआ है और वे बाद में विदेश चले गए जहां उन्होंने प्रगति की और अब सफल और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लेकिन वे सभी अपनी ईरानी राष्ट्रीयता और पृष्ठभूमि को नहीं भूले हैं और उन्हें गर्व है कि उनकी रगों में ईरानी खून बहता है।
ईरान की सफल महिलाओं के बारे में जो पहली बार खबर सामने आई है वो है प्रिंसटन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी PPL की भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर फातिमा इब्राहिमी के बारे में। फातिमा इब्राहिमी ने एक नए परमाणु संलयन रॉकेट का आविष्कार किया है जो मनुष्यों को वर्तमान अंतरिक्ष प्राणोदन या संचालक शक्ति से 10 गुना तेजी से मंगल पर ले जा सकता है। डॉक्टर फातिमा इब्राहिमी का जन्म तेहरान में हुआ है जब इराक द्वारा ईरान पर 8 वर्षीय युद्ध थोपा गया था। उस समय फिजिक्स में उनकी रुचि ने उन्हें गहन और निरंतर शोध करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे समय में जब जंग का वातावरण था और बम और गोलियों की आवाजों का शोर था, तब उन्होंने ऐसी स्थिति से खुद को बाहर निकालने के लिए भौतिकी पढ़ना और फार्मूलों की मदद से फिजिक्स की सवालों को हल करना उस युद्ध के माहौल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका था। उनकी इस खोजी आदत ने उनके मन को शांत किए रखा और उन्हें शक्ति का अनुभव भी कराया। वो बताती हैं कि आज के युवाओं का झुकाव फिजिक्स की तरफ देखा जा रहा है, जो एक अच्छी बात है। वैसे इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि आज का युवा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वो इस विषय के साथ अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं।
इस समय डॉक्टर फातिमा इब्राहिमी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की प्लाज्मा भौतिकी प्रयोगशाला में हैं। हर दिन नई नई खोज में व्यस्त हैं। भौतिकी और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जहां गैस प्रावस्था तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी विशेष परमाणु नाभिक से संबंध नहीं रह जाते। प्लाज्मा धनावेशित आयनों और अनबाउंड इलेक्ट्रॉनों से बने हुए होते हैं। प्लाज्मा का उत्पादन या तो गैस को तब तक गर्म करके किया जा सकता है जब तक कि यह आयनित न हो जाए या इसे एक मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अधीन कर दिया जाए। प्लाज्मा परमाणुओं के आयनीकरण का परिणाम है क्योंकि या तो सभी या परमाणुओं के एक हिस्से का आयनित होना संभव है। आयनीकरण की विभिन्न डिग्री होती है। डॉक्टर फातिमा इब्राहिमी का शोध पृथ्वी पर एक प्रक्रिया पर केंद्रित है जो तोकामक नामक उपकरण से अस्तित्व में आती है। तोकामक एक प्रकार के उपकरण का नाम है जिसका काम प्लाज्मा को एकत्रित करना है और उसे चुंबकीय आधार पर प्लाज्मा को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंप्यूटर जैसे उपकरण की तरह ऐसी विधि के भौतिक आधार की खोज करता है जो इन उपकरणों के डिजाइन को सरल बनाता है। साथ ही इसमें लागत भी कम आती है जो हमें एक स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा का असीमित स्रोत बनाने के करीब लाता है और यही ऊर्जा अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य भी है।
दोस्तों, जो दूसरी खबर विदेश में रहने वाली सफल ईरानी महिला के बारे में सामने आई है, दिलाराम शकीबा के बारे में। दिलाराम शकीबा ईरान की उन प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिकों में से एक हैं कि जिन्होंने विदेश में रहकर देश का गौरव बढ़ाया है। दिलाराम शकीबा द्वारा चिकित्सा और घावों के जल्दी भरने के क्षेत्र में किए गए शोधों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों के अनुसार इस युवा ईरानी वैज्ञानिक के नेतृत्व में अमरीकी शोधकर्ताओं ने घावों के उपचार के रहस्य की खोज की है और इस मुद्दे पर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। दिलाराम शकीबा का जन्म 1980 के दशक में हुआ है और वो मूल रूप से ईरानी हैं।
उनका जन्म उत्तरी ईरान के गुरगान शहर में हुआ है। वो गुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की छात्रा रह चुकी हैं। हर दिन विश्वविद्यालय की कक्षाओं के बाद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपना सारा समय प्रयोगशाला में अपने शोधों के लिए समर्पित कर दिया था। विश्वविद्यालय के अपने दूसरे ही वर्ष में दिलाराम शकीबा ने यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में उनके द्वारा किए गए शोधों के परिणामों को अपने शिक्षकों के सामने पेश कर दिया था, जिस पर उनकी काफी सराहना हुई थी। दिलाराम शकीबा ने वाशिंगटन स्थित सेंट लुइस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही कई प्रकार के सफलतापूर्वक शोध किए हैं, जिनमें से एक मेटास्टिक कैंसर के उपचार के तरीकों में एक महत्वपूर्ण शोध उनके नाम से जुड़ा हुआ है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने घाव भरने के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की है। दिलाराम शकीबा एक सफल ईरानी महिला का एक आदर्श उदाहरण है और उन सभी युवाओं के लिए एक अच्छा रोल मॉडल है कि जिनके पास भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं और सपने हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सफल ईरानी महिला की जो पेशे से टीचर हैं। 39 वर्षीय तैयबा अबुल कासिमी 12 साल से अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, लेकिन उनका जाहिरी लुक देखकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वह ब्रिटेन में रहती हैं। उनके रहने के तरीके से कोई जल्दी यह नहीं समझ पाता कि वह ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर ध्यान से देखा जाता है तब पता चलता है कि वह ईरान में नहीं बल्कि विदेश में रहती हैं। वह एक हिजाब वाली मुसलमान ईरानी महिला हैं। तैयबा अबुल कासिमी ने डॉक्टरेट स्तर तक की पढ़ाई की है और अब वह बच्चों को भाषा पढ़ाती हैं। उनके अच्छे व्यवहार के वहां रहने वाले और गैर मुस्लिम भी मुरीद हो गए हैं। यही कारण है कि एक बड़ा वर्ग उनका काफी सम्मान करता है। तैयबा अबुल कासिमी इस बारे में कहती हैं कि मैंने हमेशा अपनी पहचान को दूसरों के सामने खुलकर पेश किया है। मैं सबसे कहती हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक शिक्षित ईरानी मुस्लिम महिला हूं। मेरा विश्वास ही मेरा आत्मविश्वास है और शायद इस आत्मविश्वास के कारण मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई है।
ब्रिटेन में रहने वाली तैयबा अबुल कासिमी बताती हैं कि मैं एक ईरानी एसोसिएशन की प्रतिनिधि हूं। एसोसिएशन की एक बैठक में मेरी एक ब्रिटिश दोस्त को जब मेरा परिचय दूसरे से कराना था तो उसने इस प्रकार मेरा परिचय कराया। ये तैयबा हैं, एक मुस्लिम महिला का एक आदर्श उदाहरण। उसके बाद बैठक में मौजूद लोगों द्वारा मेरे लिए बजाई गई तालियों ने मुझे एक खास एहसास दिलाया। मैंने अपने आप से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं हमेशा किसी न किसी तरह उन्हें बताना चाहती थी कि आप पश्चिमी समाचारों और फिल्मों में मुसलमानों की जो तस्वीरें देखते हैं वे गलत हैं, वो सब मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार है। मैं एक मुस्लिम महिला हूं और मैं आपकी ही तरह जीवन का आनंद लेती हूं, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए सिद्धांत और विश्वास निर्धारित किए हैं जिनका मैं पालन करती हूं। मैं भी दुनिया की सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेती हूं और मेरे पास जीवन का आनंद लेने की कोई सीमा नहीं है। तैयबा अबुल कासिमी बताती हैं कि क्रिसमस के समय एक प्रोफेसर जो भाषा विभाग के हेड थे, उन्होंने सभी छात्रों को अपने घर आमंत्रित किया था, लेकिन मैं उस दावत में नहीं गई क्योंकि उस दावत का वातावरण मेरे जाने लायक नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से दूसरों को समस्या होती और मैं स्वयं भी परेशान होती। वहीं जब मैं दूसरे दिन विश्वविद्यालय गई तो देखा कि प्रोफेसर ने एक मेज पर विभिन्न तरह की खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि तुम कल रात नहीं आई, मैं जानता हूं कि तुम हलाल खाती हो, इसलिए मैं आज हलाल लेकर आया हूं। वास्तव में मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि प्रोफेसर ये समझ गए थे कि मैं पिछली रात उनके घर दावत में क्यों नहीं गई। अंततः उन्होंने जो सम्मान दिया वो मेरे लिए गौरव की बात थी।
We'll be right back. कार्यक्रम के अंत में एक 12 वर्षीय ईरानी लड़की की बात करते हैं जिसका नाम तारा शरीफी है। वह लंदन के पास स्थित एल्सबरी हाई स्कूल की एक छात्रा है। तारा शरीफी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध मेंसा के बुद्धि परीक्षण में उच्चतम स्कोर और 162 अंकों के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन और प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के IQ रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनका परिवार दश्तिस्तान शहर के ग्रामीण निवासियों में से है। दश्तिस्तान शहर बुशहर प्रांत से 720 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित है। तारा शरीफी के पिता का कहना है कि मेरी बेटी बहुत होशियार थी और जटिल सवालों को चुटकी में हल कर लेती थी और अपने सहपाठियों से पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी, इसलिए उनके शिक्षकों ने उसे एक असाधारण स्कूल या एक प्रतिभाशाली स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कहा। अंत में हमने उसका IQ जानने के लिए उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले वर्ल्ड IQ टेस्ट में भाग दिलाने का फैसला किया। वर्तमान में दुनिया भर के संचार माध्यमों में तारा शरीफी के IQ की चर्चा है। मीडिया स्थिति के बारे में बात कर रहा है कि तारा शरीफी का IQ सामान्य से बहुत अधिक है और आने वाले कुछ वर्षों में उसकी गिनती दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में होगी।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में हमें आप ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल ID है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.com/hi। इसी के साथ सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज़। Thank you.